एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की एक तारीख पर बात करने वाले हैं, 1066।
नॉर्मन विजय।
हाँ, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, मतलब इंग्लैंड में एक बड़ी लड़ाई हुई, एक राजा मारा गया
और एक विदेशी ड्यूक विलियम राजा बन गया। कहानी खत्म।
पर क्या कहानी वाकई इतनी सीधी है?
बिल्कुल नहीं। जॉर्ज गार्नेट की किताब द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हमें बताती है कि ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे टेकओवर की कहानी है जो इतना शातिर, इतना व्यवस्थित था कि उसने
सिर्फ एक देश का नक्शा नहीं बदला,
नहीं, उसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखने वाली कई संस्थाओं का नक्शा ही बदल दिया।
सही बात है। मतलब ये कहानी इस सवाल का जवाब देती है कि सत्ता असल में काम कैसे करती है। क्या वो सिर्फ तलवार के दम पर चलती है?
या फिर असली पावर कलम, कानून और एक कहानी गढ़ने में छिपी होती है?
और ये आज भी उतना ही सच है, चाहे हम राजनीति की बात करें या कॉरपोरेट जगत की।
तो आज हम इसी ऐतिहासिक घटना की परतें उधेड़ेंगे
और इस पड़ताल में हम दो बिल्कुल अलग अलग लगने वाली चीजों को एक साथ देखेंगे।
एक तरफ एक क्रूर और सोची समझी क्रांति
और दूसरी तरफ
दो संस्कृतियों का एक लंबा और जटिल मेलजोल। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हुई, यही तो इस कहानी की सबसे दिलचस्प पहेली है। चलिए इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं।
इस सफर में हमारे गाइड हैं लेखक जॉर्ज गार्नेट।
और गार्नेट कोई आम इतिहासकार नहीं है जो सिर्फ लड़ाइयों और तारीखों की बात करें।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मध्ययुगीन इतिहास के विशेषज्ञ हैं। और उनकी खासियत क्या है?
उनकी खासियत है उस दौर के कानूनों, राजनीतिक सोच और सबसे जरूरी, जमीन के मालिकाना हक के मामलों को समझना।
और यही बात उन्हें बहुत अलग बनाती है। वो एक जासूस की तरह है।
जासूस दिलचस्प है।
हाँ।
वो राजाओं की घोषणाओं के बजाय उस दौर के दस्तावेजों की, मतलब जमीन के कागजातों की कड़ियों को जोड़ते हैं। वो ये पता लगाते हैं कि सत्ता को असल में कागज पर कैसे जीता और मजबूत किया गया। तो वो हमें दिखाते हैं कि असली लड़ाई तो युद्ध के मैदान के बाद शुरू हुई थी।
बिल्कुल।
हाँ, उनका नजरिया यही है कि किसी भी बड़े सत्ता के बदलाव को समझना है तो ये देखो कि जमीन के रिकॉर्ड कैसे बदले गए,
कानून कैसे तोड़े मरोड़े गए,
और लोगों को ये यकीन कैसे दिलाया गया कि जो हो रहा है वो सही और कानूनी है।
तो किताब का जो सेंट्रल सवाल है वो क्या है?
किताब इस एक बड़े सवाल का जवाब देती है कि कैसे मुट्ठी भर विदेशी हमलावरों ने यूरोप के सबसे अमीर और सबसे व्यवस्थित राज्यों में से एक पर न सिर्फ कब्जा किया बल्कि उस पर अपनी पकड़ हमेशा के लिए मजबूत कर ली।
सुनने में आसान लगता है पर ये एक बहुत बड़ी गुत्थी है।
बिल्कुल। और गार्नेट इस गुत्थी को दो धागों से सुलझाते हैं। पहला धागा है एक बेहद क्रूर और सोची समझी क्रांति का।
अच्छा।
विजेता विलियम यानी विलियम द कॉन्करर ने दुनिया के सामने खुद को इंग्लैंड के कानूनी वारिस के तौर पर पेश किया, लेकिन इस कानूनी मुखौटे के पीछे
उसने सब कुछ बदल दिया।
उसने इंग्लैंड के पूरे कुलीन वर्ग को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया और एक पूरी तरह से नई फ्रांसीसी सामंती व्यवस्था थोप दी।
लेकिन अगर ये सब इतनी क्रूर क्रांति थी तो पुरानी अंग्रेजी व्यवस्था का कुछ भी नहीं बचा क्या? सब कुछ खत्म कर दिया गया।
और यहीं पर दूसरा धागा आता है, एक जटिल मेलजोल का, सिंथेसिस का। विलियम और उसके नॉर्मन साथी बहुत प्रैक्टिकल थे। उन्होंने देखा कि इंग्लैंड की जो प्रशासनिक मशीनरी थी, टैक्स वसूलने का तरीका था,
वो यूरोप में सबसे एडवांस था।
हाँ, तो उन्होंने सोने की मुर्गी को काटा नहीं बल्कि उस पर कब्जा कर लिया और उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया।
तो ये सिर्फ तबाही नहीं थी?
नहीं, ये दो सिस्टम के मिलने से कुछ बिल्कुल नया बन रहा था जो न पूरी तरह नॉर्मन था न पूरी तरह एंग्लो सैक्सन।
तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1066। ऐसा हुआ क्या कि इंग्लैंड की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई?
इसकी शुरुआत एक मौत से हुई। इंग्लैंड के राजा एडवर्ड द कन्फेसर की कोई संतान नहीं थी और उनकी मृत्यु हो गई।
तो सिंहासन खाली था?
हाँ, और दावेदार थे तीन। एक थे हैरल्ड गॉडविंसन, एक ताकतवर अंग्रेज अर्ल जिसे इंग्लैंड के लोग अपना मानते थे।
ठीक है, दूसरे?
दूसरे थे नॉर्वे के राजा हैरल्ड हार्डराडा, एक खूंखार वाइकिंग योद्धा। और तीसरे?
तीसरे थे फ्रांस में नॉर्मेंडी के ड्यूक विलियम। विलियम का दावा था कि राजा एडवर्ड ने मरते मरते उसे अपना वारिस बनाने का वादा किया था।
तो अब इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया?
इंग्लैंड के अमीरों और सलाहकारों की सभा ने अपने ही आदमी हैरल्ड गॉडविंसन को राजा चुन लिया।
एक स्वाभाविक चुनाव,
लेकिन हैरल्ड के लिए ये कांटों का ताज साबित हुआ होगा, है ना?
बिल्कुल। राजा बनते ही उसे दो तरफ से हमलों का सामना करना पड़ा।
दो तरफ से?
हाँ, पहले नॉर्वे के राजा हार्ड्राडा ने उत्तर से हमला किया। हैरल्ड अपनी सेना लेकर उत्तर की ओर भागा और स्टैमफोर्ड ब्रिज की लड़ाई में उसने वाइकिंग्स को बुरी तरह हराया। एक शानदार जीत।
वाह।
लेकिन जरा हैरल्ड की हालत सोचिए। उत्तर में इतनी बड़ी जीत मिली, शायद जश्न की तैयारी चल रही हो, और तभी एक दूत हांफते हुए आता है और कहता है, राजा जी सब बेकार हो गया, दक्षिण में विलियम अपनी सेना के साथ उतर गया है।
ओह, एक ही हफ्ते में अर्श से फर्श पर, उसे अपनी थकी हारी सेना को लेकर
देश के एक कोने से दूसरे कोने तक लगभग 400 किलोमीटर वापस भागना पड़ा।
और फिर हुई हेस्टिंग्स की वो मशहूर लड़ाई।
दिन भर चली, बहुत घमासान हुई, और शाम होते होते एक तीर हैरल्ड की आंख में लगा और वो मारा गया। अंग्रेजी सेना हार गई,
लेकिन जैसा आपने कहा, लड़ाई जीतना एक बात थी
और पूरे इंग्लैंड पर कब्जा करना बिल्कुल दूसरी। यहाँ से विलियम की असली रणनीति शुरू होती है।
और वो रणनीति क्या थी? सिर्फ ज्यादा लड़ाइयाँ?
नहीं, उसकी रणनीति थी क्रूरता और कानून का एक घातक मिश्रण।
पर क्रूरता की बात करते हैं।
जब उत्तर के लोगों ने विद्रोह किया, तो विलियम की सेना ने जो किया उसे हेरिंग ऑफ द नॉर्थ यानी उत्तर की तबाही के नाम से जाना जाता है। ये कोई लड़ाई नहीं थी।
तो फिर क्या था?
ये एक सुनियोजित आतंक था।
आतंक मतलब?
उन्होंने गांवों को जला दिया, फसलों में आग लगा दी, मवेशियों को मार डाला। नतीजा हुआ एक भयानक अकाल जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए।
बाप रे।
ये एक साफ संदेश था, विद्रोह करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा दिया जाएगा। ये डर पैदा करने का एक तरीका था।
ये तो बहुत भयानक है, लेकिन आपने कानून की भी बात की थी, इस बर्बरता में कानून कहां से आ गया?
और यही पर विलियम की असली चालाकी सामने आती है। उसने कभी नहीं कहा, मैं एक विदेशी विजेता हूं और मैंने ये देश तलवार के दम पर जीता है।
इसके बजाय
उसने एक कहानी गढ़ी। उसने दावा किया कि वो राजा एडवर्ड का कानूनी उत्तराधिकारी है और हैरल्ड एक धोखेबाज था जिसने सिंहासन हड़प लिया था।
एक मिनट, क्या मैं ये ठीक से समझ रहा हूँ? मतलब विलियम ने उन्हीं कानूनों का इस्तेमाल किया जो अंग्रेजों के थे, उन्हीं को बेदखल करने के लिए।
बिल्कुल, यही तो उसकी जीनियस थी।
ये तो अविश्वसनीय रूप से चालाकी भरा है।
हाँ, इस एक कहानी ने उसे सब कुछ करने का लीगल अधिकार दे दिया। अब जो कोई भी हैरल्ड का समर्थन करता था वो राजा का वफादार नहीं बल्कि एक गद्दार था।
और अंग्रेजी कानून के मुताबिक
एक गद्दार की जमीन जब्त की जा सकती थी। तो उसने एक एक करके लगभग सभी अंग्रेज जमींदारों को गद्दार घोषित कर दिया और उनकी जमीनें कानूनी रूप से छीन ली।
वाओ, ये तो सीधी साधी लूट नहीं है, ये तो एक लीगल जामे में छिपी हुई क्रांति है। मतलब क्रांति भी कर दी और दुनिया को दिखाया कि सब कुछ नियमों के अनुसार हो रहा है।
बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा असर पड़ा जमीन के मालिकाना हक पर।
वो कैसे?
देखिए, पुरानी एंग्लो सैक्सन व्यवस्था में बड़े जमींदार अपनी जमीन के लगभग पूरी तरह से मालिक होते थे। विलियम ने एक झटके में इस सिस्टम को खत्म कर दिया।
उसने क्या किया?
उसने घोषणा की कि इंग्लैंड की सारी जमीन, हर एक इंच, अब व्यक्तिगत रूप से राजा की है।
सब कुछ राजा का?
तो फिर बाकी लोगों का क्या हुआ?
फिर उसने वो जमीनें अपने वफादार नॉर्मन सेनापतियों और साथियों को दी, लेकिन मालिकाना हक के साथ नहीं,
बल्कि फीफ्स के रूप में।
सही।
इसका सीधा सा मतलब था, ये जमीन तब तक तुम्हारी है जब तक तुम मेरे प्रति वफादार हो और जरूरत पड़ने पर मुझे सैनिक और सेवाएं दोगे। वफादारी खत्म, जमीन खत्म।
तो उसने एक ऐसा पिरामिड बना दिया जिसके शिखर पर वो खुद था।
हाँ, और हर कोई अपनी जमीन और अपनी हैसियत के लिए सीधे उस पर निर्भर था।
इसने तो समाज का पूरा ढांचा ही बदल दिया होगा।
हमेशा के लिए बदल दिया। इसने नॉर्मन राजशाही को इतनी ज्यादा पावर दी जो पहले किसी अंग्रेज राजा के पास नहीं थी। लेकिन एक कब्जा सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं था। विलियम जानता था कि समाज के दूसरे स्तंभों पर भी कब्जा करना जरूरी है, जैसे चर्च और प्रशासन।
तो चर्च में भी उसने ये किया, सबको हटाकर अपने लोग बिठा दिए।
हाँ, लेकिन यहाँ हमें वो मेलजोल वाला पहलू ज्यादा दिखाई देता है। उसने बड़े अंग्रेजी बिशपों और मठाधीशों को हटा दिया
और उनकी जगह वफादार नॉर्मन पादरियों को नियुक्त कर दिया।
बिल्कुल, जैसे लैनफ्रैंक। इससे चर्च नॉर्मन शासन का एक मजबूत स्तंभ बन गया। और फिर 20 साल बाद 1086 में विलियम ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला, डोम्सडे बुक।
डोम्सडे बुक, मैंने इसका नाम सुना है। ये कोई साधारण किताब तो नहीं थी?
नहीं,
इसे क्रांति का बही खाता कहना ज्यादा सही होगा।
बही खाता।
हाँ, 20 साल के कब्जे के बाद विलियम ने पूरे इंग्लैंड का एक विशाल ऑडिट करवाया। उसके अफसर हर गांव, हर शहर गए और उन्होंने 3 सवाल पूछे।
कौन से 3 सवाल?
राजा एडवर्ड के समय में, यानी 1066 से पहले, इस जमीन का मालिक कौन था, आज इसका मालिक कौन है और इसकी कीमत क्या है।
ये तो एक तरह से नई व्यवस्था पर एक अंतिम कानूनी मोहर लगाने जैसा था। ये कहना कि देखो, अब सब कुछ बदल गया है और ये रहा उसका लिखित सबूत।
एकदम। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है?
क्या?
इस पूरी नॉर्मन क्रांति का हिसाब किताब रखने के लिए उन्होंने उसी पुरानी कुशल एंग्लो सैक्सन प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया। शेरिफ, शायर, मतलब काउंटी सिस्टम।
अच्छा, तो नॉर्मन लक्ष्यों के लिए एंग्लो सैक्सन तरीकों का इस्तेमाल किया।
बिल्कुल, यहीं पर क्रांति और मेलजोल एक साथ दिखाई देते हैं।
जब आप इस पूरी तस्वीर को देखते हैं, आतंक, कानूनी दांवपेच और पुरानी व्यवस्था का इस्तेमाल, तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं लगती, इसमें आज के लिए भी कई बड़े सबक छिपे हुए हैं।
हाँ, यहीं से इस कहानी के बड़े संदेश निकलने शुरू होते हैं। पहला और सबसे जरूरी सबक है दिखावे की निरंतरता के जरिए क्रांति।
रेवोल्यूशन थ्रू द विनर ऑफ कॉन्टिन्यूटी।
हाँ,
विलियम ने कभी नहीं कहा कि मैं सब कुछ तोड़ रहा हूँ। वो हमेशा कहता रहा कि मैं तो बस पुराने राजा एडवर्ड के कानूनों को ही लागू कर रही हूँ।
लेकिन इस निरंतरता के पर्दे के पीछे उसने सब कुछ बदल डाला।
ये तो आज भी होता है। जब कोई नई कंपनी किसी पुरानी कंपनी को खरीदती है तो नया मैनेजमेंट अक्सर कहता है, हम यहाँ कल्चर को बदलने नहीं आए हैं।
और फिर?
फिर वो धीरे धीरे मौजूदा एचआर और कानूनी नीतियों का ही इस्तेमाल करके सब कुछ बदल देते हैं।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा संदेश है वैधता एक हथियार के रूप में, लेजिटिमेसी एज अ वेपन। नॉर्मन्स ने ये साबित करने में बहुत मेहनत की कि उनका दावा सही और कानूनी है। उन्होंने पोप से आशीर्वाद लिया, हैरल्ड को झूठा साबित किया, इससे उनकी लूट को एक कानूनी प्रक्रिया का जामा मिल गया।
ये दिखाता है कि जमीन की लड़ाई जीतने के साथ साथ कहानी की लड़ाई, नैरेटिव की लड़ाई जीतना कितना जरूरी है।
सही बात है। और तीसरा एक सीधा साधा सबक, जमीन ही शक्ति है।
लैंड इज पावर। जिसने भी जमीन के मालिकाना हक के नियमों को कंट्रोल किया, उसने समाज को कंट्रोल किया।
और ये बात तो शायद हर समाज और हर दौर के लिए सच है, है ना?
हाँ, भारत के इतिहास में भी जमींदारी प्रथा और भूमि सुधारों के संदर्भ में हम इसे देख सकते हैं।
और आखिर में चौथा संदेश है अनपेक्षित परिणाम, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस।
मतलब?
नॉर्मन्स इंग्लैंड को जीतना चाहते थे और उसे अपने जैसा बनाना चाहते थे, लेकिन हुआ कुछ और ही। दोनों संस्कृतियों के मिलने से एक नई एंग्लो नॉर्मन संस्कृति पैदा हुई। एक नई अंग्रेजी भाषा बनी जिसमें हजारों फ्रांसीसी शब्द शामिल हो गए।
और एक ऐसी अनोखी कानूनी व्यवस्था का जन्म हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी।
जैसा कि हमने कहा, ये किताब विचारों से भरी है। गार्नेट के कुछ प्रमुख विचार हैं जो इस पूरी कहानी का सार बयां करते हैं और दिमाग में बैठ जाते हैं।
बिल्कुल।
जैसे कि उनका ये विचार कि विलियम का सबसे बड़ा दावा ये नहीं था कि वो एक विजेता है, बल्कि ये कि वो कानूनी राजा है। इसी कानूनी कहानी ने उसे अंग्रेजों को उनकी जमीन से बेदखल करने की चाबी दी। ये एक लाइन में पूरी रणनीति को समझा देता है।
ये बात पूरी कहानी का निचोड़ है। एक और विचार है जो मुझे बहुत पसंद आया। डूम्सडे बुक, इंग्लैंड का नक्शा कम, एक क्रांति का हिसाब किताब ज्यादा है।
वाह।
इसके हर पन्ने पर एक राष्ट्र की संपत्ति को एक शासक वर्ग से दूसरे को हस्तांतरित करने का रिकॉर्ड दर्ज है।
और ये भी कि नॉर्मन विजय अंग्रेजी राज को नष्ट करके नहीं, बल्कि उसकी पहले से मौजूद कुशल मशीनरी पर कब्जा करके हासिल की गई थी।
ये उस मेलजोल वाले पहलू को बहुत अच्छे से उजागर करता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे।
बिल्कुल। और अंत में गार्नेट का ये विचार कि इस विजय का असली महत्व इस बात में नहीं है कि उसने क्या नष्ट किया, बल्कि इसमें है कि उसने क्या बनाया।
कानून और प्रशासन के ऐसे नए रूप जो दोनों मूल परंपराओं से ज्यादा प्रभावित थे।
सुनने में ये 11वीं सदी की कहानी लगती है, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी हमारे चारों तरफ काम कर रहे हैं।
बिल्कुल। जैसे कॉर्पोरेट टेकओवर की बात हमने की, सोचिए एक नया सीईओ आता है और कहता है, हम नियमों के अनुसार ही चलेंगे। लेकिन फिर वो उन्हीं नियमों की ऐसी व्याख्या करता है कि पुराने कर्मचारियों के लिए टिकना मुश्किल हो जाता है और कंपनी की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। ये बिल्कुल विलियम की रणनीति है।
और कहानी गढ़ने की ताकत, आज की दुनिया में चाहे राजनीति हो या ब्रांडिंग, जो पक्ष अपनी कहानी को बेहतर ढंग से पेश करता है वही दिलों और दिमागों की लड़ाई जीतता है।
विलियम ने खुद को वैध उत्तराधिकारी और हैरल्ड को गद्दार बताकर आधी लड़ाई तो मैदान के बाहर ही जीत ली थी। हम हर रोज विज्ञापनों और राजनीतिक भाषणों में यही होते देखते हैं।
बिल्कुल। और एक आखिरी बात, मौजूदा सिस्टम का लाभ उठाना।
स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं।
हाँ, नॉर्मन्स ने अंग्रेजी प्रशासन को खत्म नहीं किया बल्कि उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये सिखाता है कि कभी कभी सब कुछ तोड़कर नया बनाने से बेहतर होता है कि मौजूदा सिस्टम को समझकर उसे अपने लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए।
पता है, इस पूरी चर्चा में मेरे लिए जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो ये है कि ये पूरी क्रांति कितने व्यवस्थित और कानूनी तरीके से की गई। ये सिर्फ तलवार का नहीं बल्कि कलम, दस्तावेजों और प्रचार का भी खेल था। ये दिखाता है कि असली ताकत कितनी चुपचाप और चालाकी से काम करती है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि इतिहास कभी भी काला या सफेद नहीं होता। ये हमेशा विनाश और निर्माण, क्रांति और मेलजोल का एक जटिल मिश्रण होता है।
सही बात है।
1066 की घटना ने इंग्लैंड को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन एक ऐसे तरीके से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और इसने उन संस्थाओं की नींव रखी जिन्हें हम आज भी जानते हैं।
इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में रह गया है।
क्या?
नॉर्मन्स ने वैधता और कानून का इस्तेमाल करके सत्ता पर कब्जा किया। क्या इतिहास में ऐसा भी होता है कि लोग उसी वैधता और कानून का इस्तेमाल करके सत्ता को चुनौती देते हैं? शायद ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।